पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। भारत में अमेरिका की साबिक सफीर नैन्सी पॉल ने भारत में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि भारत के इंतखाबात भारत अमेरिका ताल्लुकात में एक नए मरहले के लिए मुआविन होंगे। नई दिल्ली से ये रिपोर्ट दी है सुहेल अंजुम ने।
अमेरिका ने कहा है कि भारत में जारी आम इंतखाबात अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के लिए नए मौके फराहम करेंगे। भारत में अमेरिका की मुस्ताफी सफीर नैन्सी पावेल ने यहां एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह बात पहले के मुकाबले में अब ज्यादा अहम हो गई है कि दोनों मुल्क बाहमी सलामती और खुशहाली को फरोग देने के लिए दो तरफा इश्तराक के अहद का अदा करें। नैन्सी पावेल इस माह के शुरू में अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सियासी पंडितों के लिए ये दावा करना एक फैशन बन गया है कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में सर्द मेहरी आ गई है। बकौल उनके, मैं इससे मुत्तफिक नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अपने ओहदे से मुस्ताफी होने से कबल अपनी 2 साल मुद्दत कार में हमने बहुत अहम काम किए हैं, अलबत्ता हमारे रिश्तों में बाज रुकावटें भी आईं। तहम उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद इस्तेकाम आएगा और आने वाली दहाई में अमरीका और भारत आलमी मामलात में मरकजी रोल अदा करेंगे। नैन्सी पावेल ने दोनों मुल्कों के माबैन स्ट्रेटजिक मामलात में गैर मामूली ताउन का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों ने भारत अमरीका और अफगानिस्तान के माबैन से फरीकी मुजाकरात के अलावा दीगर इलाकाई उमूर पर भी मुजाकरात का आगाज किया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत की पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की शेरिया सिंह ने हमारे साथी दीपक दोभाल को एक इंटरव्यू में बताया कि लोकसभा ने अपनी साबका मुद्दत में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। उनके इंटरव्यू के इक्तिबासात।
भारत के लोग आजकल 16वीं लोकसभा यानी कौमी असेंबली के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन क्या लोकसभा के रुकन वो काम करते हैं जिसके लिए लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं? इस बारे में जानते हैं श्रेया सिंह से, जो कि भारत के एक जाने माने इदारे पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से ताल्लुक रखती हैं और उनका इदारा भारत की पार्लियामेंट के कामकाज पर खासी नज़र रखता है। श्रेया, ये बताइए कि जो मौजूदा लोकसभा है उसके मेंबर्स ने कुछ काम किया और कितना किया?
जो 15वीं लोकसभा है जिसका सत्र अभी ख़त्म होने को आ रहा है, उसने अपने पिछले 5 साल में कुछ 179 बिल्स हैं जो पास करे। भारत के इतिहास में ये सबसे कम बिल्स हैं जो एक ऐसी कोई लोकसभा जो पूरे 5 साल चली उसने पास करे हों, क्योंकि लोकसभा सिर्फ 61% टाइम के लिए चली।
ये बताइए कि जो आपने कहा कि 61% टाइम केवल पार्लियामेंट बैठी जितनी देर उसको बैठना चाहिए था उसमें से, तो ये बाकी जो लोकसभा थी इससे पिछली लोकसभा थी उसके मुकाबले कम है या ज़्यादा?
बहुत कम है। 13वीं और 14वीं लोकसभा थी, जो भी 13वीं लोकसभा एनडीए गवर्नमेंट थी और 14वीं लोकसभा जो थी वो यूपीए 1 गवर्नमेंट थी, उनने भी 91% और 87% प्रोडक्टिविटी के साथ काम किया। तो ये जो 15वीं लोकसभा थी ये उनके कंपैरिजन में भी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस थी।
तो इसकी क्या वजह है, क्या करते रहे वो लोग, क्यों कैसे अपना टाइम वेस्ट किया?
इसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट का बहुत टाइम लूज़ हुआ इस बार डिसरप्शन की वजह से। ये जो डिसरप्शन थे ये कई कारणों की वजह से थे, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन, FTI एंड मल्टी ब्रांड रिटेल, तेलंगाना के लिए सेपरेट स्टेटहुड, इस तरह के कई इश्यूज आते रहे और इनकी वजह से जो प्रोटेस्ट हुए उनको लेके पार्लियामेंट का काफ़ी टाइम लूज़ हो गया।
प्रोटेस्ट यानी हम कहें कि बाकी जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो शोर शराबा करते हैं, इससे काम नहीं हो सकता?
बिल्कुल।
अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि 179 बिल पास हुए, तो ये ज़्यादा थे कम थे?
ये काफ़ी कम थे। अगर हम देखें जो पहली कुछ लोकसभा थी उनने एवरेज पे कुछ 300 बिल पास करे हैं, तो ये ऑलमोस्ट हाफ है उसके कंपैरिजन में।
अच्छा, एक बात और, जब ये बिल पास हुए तो क्या इन पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, इनको अच्छी तरीके से बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर?
कुछ 36% ऐसे बिल थे इनमें से जो आधे घंटे से कम भी डिस्कस नहीं हुए। इसमें से 20 ऐसे बिल थे जो सिर्फ 5 मिनट के लिए डिस्कस हुए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स भी हैं जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस बिल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है इस देश के लिए, वो कुछ 19 मिनट के लिए डिस्कस हुआ लोकसभा में पास होने के पहले। एक दूसरी तरफ पे जैसे कि फूड सिक्योरिटी बिल है, लैंड एक्विजिशन बिल है, इन पे जो जब चर्चा हुई तो लोकसभा रात में 11-12 बजे तक बैठी, तो दोनों साइड हैं, पर क्योंकि इतना टाइम लूज़ हुआ तो ऐसे कई बिल थे जो डिस्कस नहीं हुए।
यानी कि जो बड़े बड़े बिल जिनकी आपने अभी बात बताई वो केवल 5 मिनट में पास कर दिए गए। अच्छा, ये बताइए कि बजट जो कि किसी भी पार्लियामेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है, उसको उस पर कितना ध्यान दिया जो भी मेंबर्स थे?
पिछले कुछ सालों में भारत में ये ट्रेंड दिख रहा है कि बजट पे कम और कम ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा 2013 में डिमांड फॉर ग्रांट्स जो बजट जो मिनिस्ट्रीज देती हैं वो पूरा का पूरा पास कर दिया गया विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डिबेट। तो ये बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है हमारे देश के लिए कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो बजट मेकिंग प्रोसेस को डेलिब्रेट नहीं कर रही है।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि 16वीं लोकसभा में ये जो है कुछ बातें सुधरेंगी और जो मेंबर्स हैं वो अपना काम ठीक से करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प मालूमाती फीचर्स के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है www.urduvoa.com। एक बार फिर, ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प मालूमाती फीचर्स के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है www.urduvoa.com।
آکسفورڈ یونیورسٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کا آغاز جمعے کے روز ہوا۔ 122 سے زیادہ پاکستانی مصنف، شاعر اور ماہرین تعلیم اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود۔
اس میلے میں پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے 100 سے زائد شخصیات شرکت کر رہی ہیں، جو اس دوران ادبی میدان کی تاریخی اور سماجی خصوصیات اور اس ضمن میں ہونے والے کام پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گی۔ یہ میلہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ ادارے کی اعلیٰ عہدیدار اور میلے کی منتظم امینہ سید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان میں مصنفین کی وزیرائی اور لوگوں میں ادب کا ذوق بیدار کرنے کے لیے ایسے میلے خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔
تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں ہمارے جو ادیب اور مصنف ہیں ان کو مطلب یہ پروجیکشن ملے، ہم پروموٹ کریں، چونکہ مجھے یہ بہت عرصے سے احساس ہے کہ ہماری ادیبوں کو جو درجہ ملنا چاہیے، جو شہرت ملنی چاہیے، مقبولیت، وہ نہیں ملتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کتابوں سے محبت ہو لوگوں کو اور پڑھنے سے دلچسپی ہو، چونکہ جب لوگ آتے ہیں اور پھر ادیبوں سے ملتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، تو ایک دم سے ان میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے کتابوں کی، ان اور وہ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے ایک ہم ایک ایسی سوسائٹی ہم دکھانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، جس میں امن ہو اور ہارمنی ہو اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور جانیں۔
ادیبوں سے ملاقات کے علاوہ اسلام آباد میں منعقدہ اس میلے میں پہلی مرتبہ داستان گوئی کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں بھارت سے آئے ہوئے داستان گو بھی شریک ہوئے۔ امینہ سید کا کہنا تھا کہ کراچی ادبی میلے میں داستان گوئی کو خاصا سراہا گیا اور اسی لیے وفاقی دارالحکومت کے اس میلے میں بھی اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ ادبی میلے کی افتتاحی تقریب سے معروف ادیبہ زہرا نگاہ اور برطانیہ سے آئے ہوئے دانشور عامر حسین نے خطاب کیا، جس کے بعد معروف فنکارہ شیما کرمانی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس میلے میں مذاکرے، گفتگو کی نشستیں، مباحثے، مشاعرہ، کتابوں کا میلہ، مختلف کتابوں کی رونمائی، تھیٹر ڈرامے اور تصاویر کی نمائش بھی منعقد ہوگی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے دنیا بھر میں صورتحال بقول ان کے ابتری کا شکار ہے، اور یہ کہ پاکستان میں بھی منظر نامے میں تبدیلی نہیں آئی۔ تفصیلات مدھیہ انور کی زبانی۔
سال 2013 میں دنیا بھر میں آزادی صحافت کی صورتحال کے حوالے سے امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ پروگرام کے مطابق آئندہ ہفتے 1 مئی کو جاری کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں آزادی صحافت کی صورتحال پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کیرن کارلکر کہتی ہیں کہ صحافت کے حوالے سے دنیا بھر میں صورتحال ابتری کا شکار ہے۔ ان کے الفاظ، بعض اہم ملکوں میں صورتحال خاصی پریشان کن ہے، جیسا کہ ان ملکوں میں صحافیوں پر حملے یا انہیں ہراساں کرنے کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جو مظاہروں یا خانہ جنگی جیسے واقعات کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ کیرن کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی صحافیوں پر دباؤ میں اضافہ، انٹرنیٹ اور نیو میڈیا پر عائد کی جانے والی کئی پابندیاں بھی ان مسائل میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ उनके ख्याल में हम इस साल एक मुसलसल मनफी तस्वीर उभरते हुए देख रहे हैं। कैरन गार्लिकर ने हमारी साथी ताबिंदा नईम से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान में सहाफती आजादियों के हवाले से सूरतेहाल में बेहतरी नहीं आई, इसलिए पाकिस्तान फ्रीडम हाउस की साल 2013 की रिपोर्ट में उन मुल्कों की फहरिस्त में रहेगा जहां बकौल उनके सहाफत आजाद नहीं है, और इस साल भी सूरतेहाल में नुमाया तब्दीली का इम्कान नजर नहीं आता। सहाफियों